ये मुझे अपने आप भीतर अपने से पूछना चाहिए। हमारा अपना व्यक्तिगत चरित्र है, कुछ नैतिकता है हमारे भीतर। हम जब यहां नहीं थे तब भी इस संसार का कुछ नहीं बिगड़ता था, अपने आप चलता था। हम जब यहां नहीं रहेंगे तब भी यह संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा कभी सोचा हमने? नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि शायद हमारे बिना परिवार नहीं चलेगा, हमारे बिना समाज नहीं चलेगा, यहां तक कि हमारे बिना राष्ट्र नहीं चलेगा, जैसे कि हम सब कुछ उसके लिए करने वाले हो। लेकिन हम अपने भीतर झांक करके देखें कि क्या ऐसा है, और हम पाएंगे कि वास्तव में हम अपने लिए ही जीते हैं। किसी और के लिए जीना तो अभी हमने सीखा ही नहीं। अपने परिवार के लिए जीना, अपने देश के लिए जीना, अपने समाज के लिए जीना, तो इसके लिए मेरे पास कोई सामाजिक या राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। कैसे? उदाहरण से समझ लें। अपन हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए व्रत, नियम और संयम का पालन करते हैं, उससे हमारा अपना जीवन अच्छा बनता है। मैं अपने लिए जी रहा हूं, इस प्रश्न का समाधान यही हो सकता है कि ठीक है, जब मैं अपने लिए जी रहा हूं तो मुझे अपना कल्याण करना चाहिए। और मेरा अपना कल्याण है कि मैं जब तप, दान, पूजा इत्यादि करूं, यह मेरा अपने लिए जीना कहलाएगा। और अगर मैं समाज और देश के लिए जी रहा हूं तो मेरा कोई अपना राष्ट्रीय चरित्र भी तो होना चाहिए। एक बाबा जी हैं जो कि ट्रेन में चले जाते हैं और वहां ट्रेन में कोई व्यक्ति केला खा करके नीचे फेंकता है तो वे झपट करके उस केले के छिलकों को उठा करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं। आसपास बैठे हुए लोग हंसते हैं, जिसने केले का छिलका फेंका है वो तो बहुत जोर से हंसता है कि देखा, ये है इंडिया की हालत, यहां के इतने गंदे लोग हैं। लेकिन कभी उन बाबा जी के राष्ट्रीय चरित्र का हमने विचार किया? उन्होंने क्यों केले के छिलके उठाकर के पॉकेट में रख लिए? जब उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये मेरे देश की संपत्ति है, ये ट्रेन सारा देश मेरा अपना है, उसमें गंदगी फैलाना मेरा चरित्र नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे सुंदर और अच्छा बनाए रखना मेरा अपना चरित्र होना चाहिए। इसलिए जहां कहीं कोई डस्टबिन मिलेगी मैं अपने पॉकेट में से इस छिलके को वहां डाल दूंगा। इनकी गलती है कि इन्होंने उसे नीचे फेंका। वे बाबा जी जब एक युवक ट्रेन में चढ़ता है और गद्दीदार बढ़िया सीट पर और पैर ऊंचे करके और ऐसे बैठ जाता है, तो दूसरे पॉकेट से वे जो उस दिन का अखबार था उसका एक पेज निकालते हैं और उसके पैर पकड़ के कहते हैं कि थोड़ा सा ऊंचे तो उठाओ भैया। वो कहता, क्या कर रहे हैं? बोले, उठाओ तो थोड़ा सा ऊंचे। ऊंचे उठाता है वो तो उसके नीचे वो पेपर बिछा देते हैं गद्दी के ऊपर, अब रख लो इस पर पैर। बड़े चकित होते हैं लोग कि क्या कर रहे हैं आप, तब भी वो यही जवाब देते हैं कि ये गद्दी जो इस पर लगाई गई है खराब करने के लिए नहीं लगाई गई है, हम अपने पैरों को अगर नीचे रख के नहीं बैठ सकते हैं, हमें गद्दी पर ही पैर रखना है तो हम उसे खराब होने से बचाएं, ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है। क्या इस तरह हमने कभी विचार किया अपने जीवन के बारे में? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम परिवार के लिए जी रहे हैं, हम समाज के लिए जी रहे हैं और हम देश के लिए जी रहे हैं? हम अपने लिए जी रहे हैं ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने जीवन के कल्याण के लिए कोई दान, पुण्य, पूजा इत्यादि करते ही नहीं, और ना ही हम अपने परिवार या देश या समाज के प्रति कोई अपना दायित्व का निर्वाह करते हैं। तब हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम किस लिए जी रहे हैं। हमारे यहां होने से किसी का क्या बनता है, किसी का क्या बिगड़ रहा है? अगर किसी का कुछ बनता है तो हमारा जीना सार्थक है, और अगर किसी का कुछ बिगड़ता है तो हमें अपने जीवन को संभाल लेना चाहिए। वहां वहां जहां की मैं दूसरे का बिगाड़ करता हूं, और वहां वहां जहां की मैं अपने जीवन का भी बिगाड़ करता हूं। मुझे इसलिए जीवन नहीं मिला है कि मैं अपने जीवन को नष्ट करूं, और ना ही मुझे जीवन इसलिए मिला है कि मैं किसी और के जीवन को नष्ट करूं। अगर ऐसा हमारे अंदर विचार आ जाए हम ऐसा समाधान खोज लें इस प्रश्न का, तो कोई वजह नहीं है कि हमारे जीवन की स्टाइल जीने की बेहतर ना हो, जरूर बेहतर हो जाएगी, हम पहले की अपेक्षा अच्छे से जीने लगेंगे। और दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर मेरे जीवन का उद्देश्य गुणग्राहिता हो तब तो मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता हूं, और अगर मेरे जीवन में सिर्फ गंदगी देखने का मेरा मकसद हो तब तो मेरा जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। मेरा जीवन तब बेहतर बन सकता है जबकि जहां कहीं भी गुण दिखाई पड़ते हैं मैं उन गुणों को ग्रहण करूं, और जो अवगुण हैं अपने भीतर भी उन अवगुणों को मैं ग्रहण ना करूं, उनको अच्छा ना मानूं। दूसरे के भीतर के अवगुणों को मैं कभी अच्छा नहीं मानता हूं तो फिर अपने भीतर के अवगुणों को मैं कैसे अच्छा मानूं। जब मैं अपने भीतर के गुणों को बहुत अच्छा मानता हूं और चाहता हूं कि लोग मेरे इन गुणों को देखें तो किसी और के भीतर मुझे भी तो गुण देखना चाहिए। बस इतना सा गणित है, जैसे मैं अपने अवगुणों को छिपाता हूं, जैसे मैं अपने अवगुणों को स्वयं भी पसंद नहीं करता हूं, ऐसे ही मैं अपने गुणों को पसंद करता हूं तो फिर मुझे दूसरे के गुणों को भी पसंद करना चाहिए, और जैसे मैं अपने अवगुणों को पसंद नहीं करता हूं इसलिए कहीं भी बाहर अवगुण हैं मुझे उनको छोड़ देना चाहिए। अगर इस तरह हम अपने जीवन को आत्महित के साथ लोक कल्याण के उद्देश्य से जीना शुरू कर दें और देखें कि कितनी पॉसिबिलिटी है और कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी शक्यता है और कितनी संभावना है, अगर हम इस पर विचार करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे भीतर क्षमता बहुत होती है लेकिन संभावनाएं कम होती, कभी कभी ऐसा होता है कि संभावनाएं बहुत होती हैं लेकिन हम उतने शक नहीं होते, करने के लिए उतने सक्षम नहीं होते। दोनों स्थितियों में एक सामंजस्य क्या हम नहीं बना सकते अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। असल में हम अपने जीवन का उद्देश्य ही निर्धारित नहीं करते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य हमने बना रखा है कि शाम घिरने पर सो जाना, सुबह उठने पर जाग करके एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाना, सिर्फ पेट भरने की अंधी दौड़ में। जरा सा विचार करें, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ अपने भीतर झांक करके ये देखें कि क्या मैं उस अंधी दौड़ में शामिल नहीं हूं, पेट कमाने के लिए जो दौड़ में सब शामिल है उसी में मैं भी नहीं हूं, सिर्फ पेट भरने के लिए, इसके अलावा मैं कुछ करता हूं या नहीं करता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन जीने का, क्या इतना ही है कुल, यह इससे अतिरिक्त है। अगर इस तरह हम अपने जीवन के बारे में विचार करें तो ऐसा नहीं समझना कि हम पेट भरने के लिए कमाएंगे नहीं या हम संसार से बिल्कुल विड्रॉ करके कहीं दूसरी जगह रहने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यह कह रहा हूं कि फिर हम कमाएंगे ढंग से, फिर हम संसार में रहेंगे ढंग से, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य अपने आत्मा के साथ साथ सबके कल्याण का उद्देश्य है। अगर इस तरह का उद्देश्य और गुणवत्ता बढ़ाने का उद्देश्य है, अपने अवगुणों को घटाने और अपने गुणों को बढ़ाने का उद्देश्य है, तो जिन जिन चीजों से मेरे गुण बढ़ते हैं मैं उन्हीं चीजों को अपने जीवन में शामिल करूंगा, बाकी चीजों को शामिल नहीं करूंगा। और तीसरी चीज कि व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, बहुत संक्षेप में उन छह प्रश्नों को समझ लें, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है, अपन इसको डिटेल करेंगे तो शायद थोड़े थोड़े में इतना ही सीख लें कि हमारे जीवन का उद्देश्य, जरा सा उद्देश्य हमें बनाना है कि हमें गुणग्राही होना है, हमें अपने साथ साथ दूसरे के कल्याण का भी कोई विचार अपने मन में रखना है। अगर इतना भी हमारे पास है तो हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस अपने आप आएंगे, अगर ऐसा उद्देश्य है तो। और व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, मेरे अपने जीवन का, वर्तमान जीवन का क्या कारण है। अगर मैं दीनहीन और दुखी हूं, दरिद्र हूं, तो उसका कोई कारण होगा। अगर मैं समृद्ध हूं और सुखी हूं तो उसका भी कोई कारण होगा, और वो कारण मेरे भीतर है, मैं उसको बाहर खोजता हूं, मैं सोचता हूं कि इन या उनकी वजह से मेरा जीवन दीनहीन और दरिद्रता में गुजर रहा है, या कि मैं ये सोचता हूं कार्ल मार्क्स की तरह कि चूंकि संसार में शोषण है इसलिए शायद मेरा जीवन दीनहीन और दुखी है, ये बहुत बहुत छोटे से कारण है। अगर बहुत गौर से हम इस प्रश्न के जवाब के लिए भीतर खोजें तो इसका कारण मेरे ही भीतर है। अगर मैं दरिद्र हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और अगर मैं समृद्ध और सुखी हूं तो उसकी भी जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं अपने दुख दर्द और दरिद्रता का रोना नहीं रो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने पहले कुछ ऐसा किया है, उसकी वजह से मुझे दीनहीन और दरिद्र होना पड़ा है। ये दीनहीन और दरिद्रता मेरी अपनी चॉइस है, मेरा अपना चुनाव है। ये बात जो है बहुत मुश्किल से पचती है, एकदम नहीं पचेगी। ऐसा लगता है कि इस या उस व्यक्ति ने हमें दीनहीन और दरिद्र बना के रखा है, या समाज की व्यवस्था ऐसी है जिसने कि मुझे दीनहीन और पतित बना रखा है। लेकिन भैया, इसका अगर कारण अपने भीतर खोजेंगे तो हमारे भीतर ही वो कारण है कि ये हमारी अपनी च्वाइस है। हम चाहते नहीं है लेकिन करते हम वही है जिससे कि हमें ये चीज प्राप्त होगी। आज इस चीज का बहुत चलन हो गया है, बहुत रिवाज हो गया है कहने सुनने का इस तरह का, कह रहे भैया अब तो धर्म बड़े बड़े आदमियों को है, पैसा वारों को है, हम गरीबों को पूछत है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस पर विचार करना कि ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इस तरह से आप दूसरे की भावनाओं का शोषण नहीं कर रहे हैं, आप अपनी इस दरिद्रता को दूसरे के सामने रोना लेकर के और क्या छिपाना चाहते हैं? उन कारणों को छिपाना चाहते हैं जिन कारणों से आप दरिद्र और दीनहीन हैं वर्तमान में। वो ठीक है कि जो समृद्ध है और सुखी है वो अपने अहंकार में खोया है, लेकिन आप भी तो अपने संकलेश से नहीं उबर पाए हैं। हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। जिसके पास समृद्धि और सुख है वो अपने लिए ये सोच रहा है कि मैंने पहले बहुत कुछ अच्छा किया होगा और उस अहंकार में फूला फूला फिरता है, वो भी आगे के लिए क्या चुन रहा है? अपने हाथ से दीनहीन और दरिद्रता चुन रहा है। और जो व्यक्ति अपने दीनहीन और दरिद्र होने का रोना रो रहा है वो भी अपने हाथ से और अगले दीनहीन और दरिद्रता को ही चुन रहा है। इसकी दोनों अपने आप में यही कर रहे हैं। और हम और आप में से सारे लोग इसी तरह के तो हैं, जिनको कुछ समृद्धि और सुख है वे अपने उस अहंकार में खोए हैं, और जिनको दीनहीन और दरिद्रता मिली है वे अपने संकलेश से नहीं उबर पा रहे हैं, और दोनों संसार बढ़ा ही रहे हैं, कोई घटा नहीं रहा है। तो जरा सा विचार करें हम सब बैठ करके कि इसका कारण क्या है। मैं जैसा हूं, मेरी जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदारी मेरी है, किसी और दूसरे की है? अगर किसी और दूसरे की है तो चलो चलते हैं उसके चरणों में, मर्सी अपील करते हैं कि मालिक कुछ तो इंप्रूवमेंट करो, कुछ तो मेरा कुछ कल्याण करो। लेकिन किसी के भी चरणों में बैठ करके और उससे कितने ही हम मांग लें लेकिन हम एफर्ट कितना भी करें लेकिन डिजर्व नहीं करते हो, तो एफर्ट करने से भी कुछ नहीं होगा। हम अपने भीतर योग्य नहीं हैं, उसके लायक नहीं हैं, तो कोई हम पे कृपा भी कर देगा तो चीज हमें मिलने वाली नहीं। हालांकि ऐसी कोई कृपा नहीं होती है, पर मान लो अगर अपन कि शायद किसी से निवेदन करने पर कि वो हमें हमारे जीवन को अच्छा बना देवे, तो जब तक हम तैयार ना हो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, खुद कोशिश ना करें, तब तक कोई हम पे कृपा करके भी हमारे जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। हमारे उन कारणों को हमें हटाना पड़ेगा जिन कारणों से हमने यहां पर जैसा जीवन पाया है, उस सब की जिम्मेदारी हमारी है, भला या बुरा। अगर ऐसा हम विचार करें तो कौन होगा जो अपने जीवन को बुरा बनाना चाहेगा, और क्यों नहीं हम अपने जीवन को भला बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी मान करके और कोई परिश्रम नहीं करते हैं? क्यों कोई उद्यम नहीं करते हैं? क्यों किसी से शिकायत करते हैं कि मैं इस तरह से क्यों हूं? तो तीसरे प्रश्न के जवाब में हमने यही खोजा कि मैं जो जैसा हूं, भला हूं या बुरा हूं, उसकी जिम्मेदारी मैं अपनी स्वीकार करता हूं। पूरे मन से अगर हम ये स्वीकार कर लें और फिर हम देखें कि मुझे कैसा होना चाहिए, तो कोई वजह नहीं है कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा हो सकता हूं। मैं जैसा हूं अब उस पर तो मेरा कोई वश नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने पहले कुछ अपने संस्कारों में डाल लिया था, वैसा होना मैंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब मैं इस तरह का जीवन स्वीकार नहीं करता हूं, तो मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो एक दिशा इससे मिल सकती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट? मेरे जीवन में जो मैं भले और बुरे का ज्ञान रखता हूं उसका महत्व क्या है। इसके बाद जबकि मैंने जान लिया है कि भरा और बुरा जीवन होता है, तब फिर मैं भले और बुरे जीवन को जान करके इसका अपने जीवन में क्या उपयोग कर रहा हूं। यहां कौन नहीं है जिसको नहीं मालूम है कि इसमें भला होता है और इसमें बुरा होता है। जितने लोग बैठे हैं सबको मालूम होगा कि ये मेरी भलाई का काम है और मेरी बुराई का। लेकिन कितने लोग इसमें से हैं जो अपनी भलाई का उद्यम 24 घंटे करते हैं और बुराई का एक भी उद्यम नहीं करते। तो फिर हमारे इस जानने का क्या मतलब हुआ। एक व्यक्ति जिसको पाप पुण्य के बारे में कुछ नहीं मालूम है वो अपने तरह से जिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको पाप और पुण्य के बारे में मालूम है वे भी पाप में लिप्त हैं और पुण्य से दूर हैं, तो बताइएगा उनके और जानने का क्या मतलब हुआ। फिर इससे अच्छा तो था कि हम नहीं जानते, हम अज्ञानी बने रहते। ऐसा हमें विचार करना चाहिए कि हमने जो ज्ञान हासिल किया है, हित और अहित को जो हमें हमारे भीतर विचार की शक्ति मिली है जिससे हम ये सोच पाते हैं कि क्या भला है और क्या बुरा है, और जो हम जानते हैं कि ये चीज भली है, तो क्यों नहीं हम उस भले को ज्यादा परिश्रम करके हासिल करने की कोशिश करते हैं। और साथ में जो जो मेरे भीतर बुरा है मैं जानता हूं कि बुरा है, तो क्यों नहीं मैं उसे रोज रोज हटाने की कोशिश करता हूं, घटाने की कोशिश क्यों नहीं करता। अगर इस तरह हम इस प्रश्न को पूछ करके और अपने भीतर उसका समाधान खोजना चाहें तो खोज सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें दिखता नहीं है। जैसे कि एक गरीब आदमी को जो कि भीख मांगता था उसको नहीं दिखता था कि उसके पास क्या है, वो हमेशा यही कहता रहता था कि मैं तो इतना गरीब, मेरे पास कुछ भी नहीं। एक वहीं से बाबा जी निकलते थे, उन्होंने कहा देख तेरे पास बहुत कुछ है। उसने कहा क्यों बाबा जी, दुनिया मजाक करती मेरे से, आप भी ऐसा मजाक कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, फटे कपड़े हैं, ठीक ढंग से कपड़े भी पहनने के लिए नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, ये कटोरा देख रहा हूं कितना फूट गया है, जो मांगता हूं वो भी इसमें से गिर जाता है, और आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत कुछ है। तो बाबा जी बोले कि देख तू पहले तय कर ले, अगर तू बेचना चाहे तो मैं तेरा बिकवा दूंगा, बहुत कीमती कीमती सामान है तेरे पास। अरे फिर आप मजाक कर रहे हैं? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तू मना मर मत करना। ने कहा ठीक है, ये कथरी है मेरे पास, कपड़ों की थोड़ी सी पोटली है, आप क्या बिकवा देंगे इसमें से। बोल तेरे को राजा के पास ले चलता हूं, मैं बिकवा दूंगा तेरा सामान, तेरे पास बहुत सारा सामान है, लाखों रुपए का बिकेगा। उसने कहा अजीब आदमी है। गए राजा साहब के पास और राजा को धीरे से कान में कह दिया कि मैं जैसा जैसा बोलता जाऊं आप ओके करते जाना कि हाँ ठीक है। और उस भिखारी से कहा कि देख राजा से मेरी बात हो गई है, तू अगर अपनी एक आंख बेचना चाहे तो 5 लाख तो राजा बोल चुके। राजा ने कहा हाँ हाँ 5 लाख रुपया एक आंख का, और अगर तू दोनों दे तो 20 लाख सीधा सीधा। उसने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ में। इससे पहले कि वो भिखारी कुछ और कहे उस बाबा ने कहा कि सुन मेरी राजा से बात हो गई है, अगर तू अपने हाथ बेचना चाहे तो 10-10 लाख रुपए के दोनों हाथ बिकवा सकता हूं, और तू पैर बेचना चाहे तो 50-50 लाख के बीच बिकवा सकता हूं। अब तो बहुत मुश्किल में पड़ा वो भिखारी। तो बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रख के इतना ही कहा कि अब किसी से मत कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास करोड़ों रुपए की कीमत वाली चीजें हैं, अगर तू एक एक भी बेच, अगर इनकी कीमत समझ, अगर तो दो आंखें मिली इसके लिए कभी धन्यवाद नहीं दिया, दो हाथ दुरुस्त हैं कभी इसके लिए किसी को कोई धन्यवाद नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास तो दोनों हाथ है, नहीं मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ये तो दुनिया से रोना रोया है लेकिन मेरे दोनों हाथ हैं, इस बात का विश्वास मन के भीतर नहीं, मेरे दोनों पैर साबुत हैं, इस मैं चल करके अपनी मंजिल पा सकता हूं, मेरे पास दोनों हाथ हैं, मैं अपना और दूसरे का भी भला कर सकता हूं इन दोनों हाथ से, मेरे पास दो दो आंखें हैं, मैं पूरी दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो देख सकता हूं और अपने भीतर जो कुछ भी बुरा है उसे देख करके हटा सकता हूं, इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज हो सकती है, बताइएगा। क्या इस तरह हमें नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए, जब हमारे पास सोचने की ताकत है तब जरूर से, जिनके पास सोचने की ताकत नहीं उनसे तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सब समझदार अपने को मानने वाले लोग हैं, क्या इतनी समझदारी हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, अपने से पूछना चाहिए कि जब हम भले और बुरे के बारे में जानते हैं तो फिर हमारे उस ज्ञान का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, और व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ टू अचीव द गोल, और हमारे जीवन के लिए हमने क्या अपना रखा है, हमारे जीवन का क्या ढंग है, क्या हमारे उद्देश्य की पूर्ति हम अपने इस जीवन के ढंग से कर रहे हैं, या कि सिर्फ हमने अपना एक उद्देश्य बना रखा है कि मुझे अपने गुणों को बढ़ाना है और मुझे बहुत अच्छा जीवन बनाना है। क्या इसके लिए मैं अपने वर्तमान में कुछ कर रहा हूं या नहीं? मैं अपने जीवन में बेईमानी से जीवन जीता रहा हूं और अपने आप को भला बनाने की चेष्टा करता रहा हूं, उद्देश्य मेरा बहुत पवित्र हो लेकिन मैं साधनों का उपयोग ठीक ना करूं, उनका दुरुपयोग करूं, तो बताइएगा मैं अपने उस अल्टीमेट गोल को या अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाऊंगा? वैसा हमें अपने आप से पूछना चाहिए सबको। जैसा मैं उद्देश्य निर्धारित करता हूं, मेरे जीवन में उस तरफ बढ़ने का कोई उद्यम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है या नहीं हो रहा है? हम किसी और के घर की तरफ 100 कदम रखें और अपने घर की तरफ 1 कदम रखें तो भैया अपने घर पहुंचेंगे या और किसी के घर? हम अच्छा बनने के लिए तो 1 प्रयास करें और बुरे बनने के 100 प्रयास करें तो कभी अच्छे बनेंगे? हमारा भले ही विचार अच्छे बनने का हो, कोई भी कह देगा कि नहीं बनेंगे, लेकिन यह बात हमारे मन में आनी चाहिए ना, हमारे बहुत भीतर से यह बात आनी चाहिए कि ठीक तो है, जब मैंने अपना उद्देश्य निर्धारित कर लिया है भले बनने का, तो फिर मैं रोज रोज क्यों नहीं उस दिशा में प्रयास करता, मुझे निरंतर उसी दिशा में प्रयास करना। बस जैसे सूरज उगता है रोशनी देकर के अपना काम करके वापस लौट जाता है, जैसे हवाएं चलती हैं शीतलता देकर के लौट जाती हैं, क्या हम सूरज नदी और हवाओं की तरह एक सहज जीवन नहीं जी सकते हैं, जहां कोई लिप्तता नहीं है, जहां कोई अपराध बोध नहीं है, जहां कोई पाप नहीं है, क्या हम वैसा जीवन नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं, एक क्षण को ही सही, एक क्षण को कह रहा हूं, लेकिन हमारे भीतर भावना तो होनी चाहिए कि मेरा उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जबकि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति के योग परिश्रम करूं। और आखिरी बात भी हमें जरूर पूछनी चाहिए अपने आप से कि मेरे इस जीवन का अंत कहां जाकर के होगा, वो मृत्यु में जाकर होगा, ये सब जानते हैं। तो 5 प्रश्न तो हैं कि क्या जीवन है, और 1 प्रश्न है कि मृत्यु क्या है, जो कि मेरे लिए अनिवार्य है उसके बारे में मुझे जानना चाहिए। जो मैं जीवन जी रहा हूं उसके बारे में तो मैंने इतने सारे प्रश्न अपने मन से कर लिए हैं और उनका समाधान भी खोज लिया है, लेकिन ये जो जीवन की अनिवार्यता है जो जीवन के अंत में आकर के खड़ी हो जाती है, उसकी मेरी कोई तैयारी है या नहीं है? मैंने जीवन की यात्रा के लिए तो सारा सामान तैयार करके रखा है, लेकिन उस मृत्यु की यात्रा के लिए मेरे पास कोई सामान है? मैं कैसे करूंगा उस यात्रा को, मुझे ही संपन्न करनी है। मैं मृत्यु के बारे में सोच करके घबरा तो नहीं जाता हूं? अगर कोई मृत्यु के बारे में सोच के घबराता है तो इसके मायने हैं कि उसको जीवन जीने का ढंग नहीं मालूम। विनोबा कहते थे कि मैं आप कैसे जीवन जिए हैं ये जीवन भर नहीं जानूंगा, मैं तो आपके मरने से जानूंगा कि आप कैसे जिए हैं। मरण के समय ये डिसाइड होगा कि आपने जीवन कैसा जिया है, इसलिए मृत्यु के बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु के बारे में लोग दो तरह से समझते हैं कि मृत्यु तो बहुत खतरनाक चीज है, आती है तो जीवन लेके चली जाती है, इसलिए मृत्यु से हमेशा डरते रहना चाहिए, मृत्यु से बचते रहना चाहिए, सारे उपाय करना चाहिए मृत्यु से बचने के। लेकिन मृत्यु के बारे में दूसरे तरह के भी लोग हैं जो जानते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, वो एक दिन अवश्य आती है, मुझे इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, मुझे इससे पहले कि मृत्यु आए अपने जीवन को सफल कर लेना चाहिए, एक वे लोग भी हैं। हम देखें कि हम इनमें से कौन से लोग हैं। बिभेति मृत्यो न ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा तथा पिवा लोभ काम अवश्यो व्रथा स्वयं तप्यत इति अवादी। यहां हम मृत्यु से भयभीत हैं और मोक्ष की कामना करते हैं, सभी ऐसे ही हैं, लेकिन कोई भी मृत्यु से बचने का मृत्यु से पार होने का उपाय नहीं करता है और अपने मुक्त होने के लिए भी कोई उद्यम नहीं करता है। बस अकेले मृत्यु से भयभीत होना और मोक्ष की कामना करना इतने से काम नहीं बनने वाला है, बल्कि उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे करूं और इस संसार से मुक्त कैसे हों, इसके लिए कोई परिश्रम, इसके लिए कोई उद्यम हमें करना चाहिए। मृत्यु से बचने का उद्यम यही है कि जीवन को ठीक से जिए। हम मरने से नहीं डरते हमारे ख्याल से, तो मरते समय मृत्यु से शायद कम लोग डरते होंगे। जीवन भर कुछ नहीं कर पाए इस बात की पीड़ा बहुत बहुत बेचैन करती है। वे लोग ठीक से मृत्यु को स्वीकार कर पाते हैं जिनने ठीक से जीवन जिया है, जिन्हें जीने के लिए जीवन मिला था और उसका सदुपयोग कर लिया, उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं लगता। क्या हम ऐसा प्रयास नहीं कर सकते कि जीवन इतना बढ़िया से जिए कि आखिरी समय मृत्यु आए तो हम स्वागत करें कि इतने देर से आए, हमारा सारा काम तो हमने पूरा कर लिया, चलो चलते। वे जिनका काम जीवन भर अधूरा रह जाता है, वे मृत्यु के आने पर हड़बड़ाते हैं कि थोड़ी और एक्सटेंड कर दो, वो सारा काम और हो जाए। और ऐसी भी एक घटना आती है कि अपने पुत्र की आयु ले ली थी 100 वर्ष की और अपने उस और एक और पुत्र की आयु ले ली थी और 1000 वर्ष तक जिया, लेकिन इसके बाद जब मृत्यु आई कि हो गया तुम्हारा काम पूरा, वो कहता अभी और थोड़ा सा, कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों का जो कल पे टाल देते हैं, मृत्यु तो कल भी आ सकती है, इसलिए कल पर क्यों टाला जाए, आज ही का क्यों ना कर लिया जाए, इतना सा हिसाब है। लेकिन हम जीवन को भी कल पे टालते हैं, मृत्यु को भी कल पे टालते हैं। आज के लिए भी तो कुछ है, वो मुझे आज कर लेना चाहिए। जीवन को संभालना ही मृत्यु को संभालना है। एक छोटा सा उदाहरण से अपन समझें, विवेकानंद के जीवन का है। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। जब वो 10-12 वर्ष के थे तो एक बार मां से पैसे लेकर के मेला देखने गए थे। और छोटे बच्चे जब मेले में जाते हैं तो क्या लेके आते हैं, खेल खिलौने लेके आते हैं। पुराने जमाने में खेल खिलौने माटी के बनते थे जिनको बहुत संभाल के रखना पड़ता था, क्योंकि वे किसी भी क्षण टूट सकते थे। और शायद इसलिए माटी के बनते थे कि हम संभालना सीख सकें और टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रख सकें। अब नहीं बनते ऐसे खिलौने, अब तो दूसरे को तोड़ने वाले खिलौने बनते हैं, बंदूक की स्टाइल में छोटे बच्चों को दिलाए जाते हैं और वे अपने पिता की तरफ ही तान कर कहते हैं कि मारूं। पहले तो अपने पिता की गोद में जो खिलौना लेके आए हैं, गुड़िया लेके आए हैं, उसको लिटा देते थे कि थोड़ी देर आप लिटाओ हमारी गुड़िया को, हम आते हैं काम करके, देखो संभाल करके लिटाना। वो उस समय खिलौने की नहीं लगती थी, वो जीवित मालूम पड़ती थी। अब तो जीवन भी खिलौना हो गया, पहले खिलौने से जीवन मिलता था, खिलौने भी जीवन की तरह मालूम पड़ते थे, अब तो जीवन भी दूसरे के हाथ का खिलौना हो गया है कि वो कहता है बंदूक तान करके कि मारूं, मैं खेल खेल में तुम्हें मार सकता हूं। पहले तो खेल खेल में लोग जीवन देने की बात करते थे, अब तो खेल खेल में प्राण लेने की बात करते, इतना ही बदला है। खिलौना का पैटर्न बदल गया है, वो क्या बदला, हमारा जीवन ही बदल गया है, हमारे जीवन का स्टाइल ही बदल गया, हमारा सारा सोच गड़बड़ा गया है। अगर गौर से देखें तो क्या खरीद के लाए थे मेले से, गुड्डा गुड़िया खरीद के लाए थे माटी की और गोद में संभाले चले आ रहे थे रास्ते से, और अचानक देखा कि एक टांगा चला आ रहा है, बहुत तेज तेज चला आ रहा है, जैसे कि आगरे की सड़कों पर तांगा तेज तेज चलता है, ऐसे ही चला आ रहा था। और इतना ही नहीं, एक मां पिता अपने छोटे से बेटे का हाथ पकड़े बाजू से चले जा रहे हैं, लेकिन बेटा है कि सीधा चलते ही नहीं, छोटा सा है, और पता नहीं कैसा क्या हुआ कि हाथ छुड़ा करके वो बेटा बीच रास्ते पर आ गया है और उधर से तांगा बहुत तेजी से आ रहा है। माता पिता कुछ इससे पहले कि करें उसे बचाने का प्रयास करें। वे घबरा जाते हैं कि अब तो गया इस तांगे के नीचे मेरा बेटा। और नरेन देख रहे हैं गौर से, एक तरफ ख्याल है अपने गुड्डा गुड़िया जो माटी के लेके आए थे उनको संभाले हैं, लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि किसी और का भी खिलौना, जो जीता जागता खिलौना है, एक मिनट लगेगा और अगले क्षण वो भी माटी का हो जाएगा। मैं इन माटी के खिलौनों को बचाऊं या कि उस जीते जागते को बचाऊं, और निर्णय लेने में देर नहीं की। हम लोग तो बहुत देर कर देते हैं निर्णय लेने में। वे माटी के खिलौने कब उनके हाथ से छूट गए और कब उन्होंने दौड़ करके उतने छोटे से बालक को उस तांगे के नीचे जाने से पहले ही खींच लिया और माता पिता के पास दे करके अपने खिलौने समेट के आगे बढ़ गए। माता पिता तो थोड़ी देर को सोच ही नहीं पाए कि क्या हुआ, किसने किया, चमत्कार हो गया। बेटे को छाती से लगाए और आसपास देख रहे हैं कि कहां चला गया वो छोटा सा बेटा जिसने बचा लिया है मेरे इस बालक को। वो दूर जाता दिखाई पड़ा, पीछे पीछे हो गए हैं उसके, किसको धन्यवाद तो दे दें। और घर तक पहुंच जाते हैं और नरेंद्र तो अपने घर पहुंच करके मां को कुछ बिना बताए भीतर चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों माता पिता अपने छोटे से बेटे को चिपकाए उनकी मां से पूछते हैं कि वो जो अंदर गया है वो आपका बेटा है ना? हाँ, मेरा ही बेटा है। कुछ गलती हुई क्या उससे? कुछ गलती नहीं हुई। ये जो हमारा छोटा सा बेटा आज तांगे के नीचे आ जाता और उसके प्राण निकल जाते, आपके बेटे ने ही उसके प्राण बचा लिए हैं। हम तो उसके पैर छूने आए थे, आपके भी पैर छूते हैं। और मां एक तरफ उसकी आंख में आंसू हैं और एक तरफ चेहरे पर मुस्कुराहट है, और बड़े सारे 12 बरस के नरेन को गोद में उठा करके सारे घर में फिरती है कि तेने मेरे जन्म देने को सार्थक कर दिया, मेरे जीवन को सार्थक कर दिया, अपने माटी के गुड्डा गुड़िया टूट जाने दिए लेकिन चेतना को बचा लिया। अगर ये दृष्टिकोण हमारे अपने जीवन का हो कि हमें निरंतर अपने इस चेतना की संभाल करनी है, और जो कुछ भी यहां माटी का है वो अगर टूटता है, शरीर तो माटी का ही है, वो तो एक दिन टूटेगा ही, लेकिन इससे पहले कि वो टूटे मुझे अपनी चेतना को संभाल लेना है। अगर ये विचार हमारे मन में आ जाए तो सारे जीवन का समाधान इन्हीं प्रश्नों में से हम खोज करके अपने जीवन को जरूर से अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसी भावना के साथ हम सब नमोकार करेंगे। इस हॉल में शायद पहली बार इस भावना के साथ कि हम अपने जीवन में अपने जीवन को, अपनी चेतना को संभालें, और जहां जहां भी चेतना है वहां भी हम उसे संभालें और उसकी क्षति ना हो सके हमारे जीवन से, यही हमारा उद्देश्य रहे। इसी भावना के साथ हम नमोकार करते हैं। नमो अरिहं नमो लोये सौव सावूनम चत्तारि मंगलम मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहं पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि